कर्नाटक क्या करेगा? सदा A1 का नाटक दिखाएगा और नाटक नहीं दिखाना। वैसे कर्नाटक में नाटक बहुत होते हैं, अभी A1 का नाटक दिखाना। ईस्टर्न जोन क्या कमाल करेगा, चारों ओर A1 का सूर्य उदय करेगा। सूर्योदय होता है ना ईस्ट से, 4 बजे हो जाता है
इधर, नीचे 4:30 बजे।
तमिलनाडु केरला, तमिलनाडु में विशेष डांस का महत्व है, तो चारों ओर A1 का खुशी का नाच दिखाएंगे, सब A1। इंदौर वाले क्या करेंगे? इंडोर का अर्थ ही है अंतर्मुखता, तो इंदौर वाले चारों ओर अंतर्मुखता की शक्ति के वाइब्रेशन से चारों ओर A1 के वाइब्रेशन फैलाएंगे। मंजूर है? क्या करेंगे? इंदौर का अर्थ है अंतर्मुखता, तो इंदौर वाले चारों ओर अंतर्मुखता की शक्ति के वाइब्रेशन से चारों ओर A1 के वाइब्रेशन फैलाएंगे। मंजूर है? तो इंडोर अर्थात अंतर्मुखी, अंतर्मुखी अर्थात अंतर्मुखता अर्थात क्या मीना सिस्टर? तो फिर एकांत मतलब क्या? आंतरिक यात्रा और स्थित रहना, वो अंतर्मुखता है। और
चुप रहना
मौन, साइलेंस,
मन का मौन,
अंतर का मौन, अंतर्मुखता, मुख को अंतर कर देना, इधर है ना, उसको अंदर कर देना। और मनन की अवस्था अंतर्मुखी अवस्था है, चिंतन की अवस्था अंतर की अवस्था है, एक के अंत में खोए रहने की अवस्था एकांत और अंतर्मुखता की अवस्था है। और गुफा के अंदर स्थित रहना, जैसे पांडव गुफा के अंदर स्थित थे, वैसे भ्रुकुटी आत्मा की गुफा है, उस गुफा की कुटिया में, उस आत्मा की गुफा में स्थित रहना अर्थात अंतर्मुखता। और अंतर्मुखता अर्थात पुराने संसार से रूहानी संसार में रहना और बाह्य संसार से मुक्त और
न्यारे और प्यारे,
न्यारे रहना और अंतर, जहाँ सब अंतर मिट जाए, लिंग भेद, जाति भेद, धर्म भेद, संसार के जितने अंतर है, वर्ण भेद, सारे अंतर जहाँ मिट जाए, समभाव, वह है अंतर्मुक्ता। और आत्माभिमानी स्थिति ही अंतर्मुखी स्थिति है, ये सर्वोच्च परिभाषा है अंतर्मुक्ता की। अंतर्मुक्ता अर्थात अंतर्मुखी, आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होते ही आत्मा अंतर्मुखी हो जाती है स्वतः। बाह्य जगत के आकर्षण से परे रहना, बाह्य व्यक्ति के आकर्षणों से परे रहना, आकर्षण व्यक्ति का, वस्तु का, वैभव का, इस संसार को असार जानना, इस देह को मिट्टी जानना, एक तो बाह्य जगत से वैराग और आंतरिक जगत से राग। बाह्य जगत के जो रागी है उनकी संगति न करना, यह अंतर्मुखी अवस्था है। अगर किसी भी देहधारी में संकल्प मात्र भी आकर्षण जाता है तो कमलेश भाई को कौन है? बेवफा है वो। वफादार बनना अंतर्मुखता की अवस्था है।
विश्वासघात,
बाप से विश्वासघात, निरंतर अपने स्वरूप में स्थित रहना, यह अंतर्मुखी अवस्था है। निरंतर बाह्य जगत को देखते हुए भी नहीं देखना, देखते हुए भी उसके वास्तविक स्वरूप को देखना, देखते हुए भी निरंतर ये स्मरण रखना कि जो दिख रहा है वो सदैव नहीं रहने वाला है, जो दिख रहा है वो क्षणभंगुर है, जो दिख रहा है उसका वास्तविक स्वरूप कुछ और है, वो केवल भासित हो रहा है, संसार के सुख वैभव प्राप्तियां, इस सुख इस वैभव के आगे वो मिथ्या है। यह स्थिति अंतर्मुखी अवस्था है। निरंतर स्व के स्थित में, स्वसत्ता में स्थित रहना, आंतरिक सत्ता, आंतरिक वैभव, आंतरिक प्राप्तियां के सामने संसार की सत्ता, संसार की प्राप्तियां, संसार के सुख, संसार के वैभव कौन है? निरंतर आत्माभिमानी स्थिति में स्थित रहने का प्रयत्न नहीं। कल हम एक मुरली पढ़ रहे थे 1990 की, उसमें बाबा ने साधना की परिभाषा बताई है। साधना अर्थात क्या, यथार्थ साधना किसको कहेंगे? केवल बाबा के कमरे में जाकर योग में शरीर से बैठ जाना योग नहीं है। चार चीजें बिठानी पड़ेगी जब शरीर को बिठाते हो तो। शरीर भी बैठ जाए तो मन भी बैठ जाए, तो बुद्धि भी बैठ जाए और दिल भी बैठ जाए। ये चारों चीजें जब बैठ जाएगी तब कहेंगे यथार्थ साधना। मन संकल्प और विकल्पों में भटके ना, बुद्धि और कहीं कहीं जाए ना, और दिल सबसे महत्वपूर्ण, इमोशंस, भावनाएं, जज्बात, फीलिंग्स, वो सब एक की ओर केंद्रित रहे। जैसे कल की मुरली में था ना, सर्व संबंध एक बाप से हो तो क्या हो जाएगा चिमन भाई? सात आठ चीजें हो जाएगी। अगर सर्व संबंध एक बाप से है तो आठ, कितनी, आठ या दस चीजें, कौन सी? एक तो विघ्न विनाशक बन जाओगे, सदा खुशी में नाचते रहेंगे, अथक रहेंगे, थकावट का अनुभव नहीं होगा। ये कब होगा? इसका फिर से गहराई से सोचो। बाबा ने कहा जब सर्व संबंध एक से होगा। अगर सर्व संबंध एक से है तो ये सारी चीजें स्वतः ही होगी, क्योंकि सर्व संबंध एक से नहीं है तो शायद इस वजह से ये चीजें नहीं हो रही है। कौन सी वो चीजें हैं? थकावट का अनुभव नहीं होगा। अभी थकावट का अनुभव हो रहा है, थकान महसूस हो रही है, आत्मा दुख और गमगीन हो रही है। क्यों? खुशी में नाचने का उसे अनुभव नहीं है, शायद बेवफा है। संभवतः बुद्धि कहीं और जा रही है, संभवतः बुद्धि कहीं भटक रही है, संभवतः बुद्धि को बाप से भी प्यारी चीज कोई मिली है इस संसार में ऐसी।
तो बिल्कुल थकावट नहीं होना चाहिए।
जिसके सर्व संबंध एक से है उसे थकावट का अनुभव नहीं होगा, वह अथक होगा। कल के वरदान के महावाक्य है, बहुत सदा खुशी में नाचते रहेंगे। दो, वो सदा विघ्न विनाशक रहेंगे। विघ्न आ रहे और विघ्नों की महसूसता भी हो रही है और विघ्नों से हर बार बार हार हो रही है, इसका मतलब संभवतः बाप से सर्व संबंध नहीं है। याद और सेवा में वो आत्मा मगन रहेगी, उस आत्मा को सदा डबल लाइट स्थिति का अनुभव होगा, निर्बोध और निर्भार अवस्था का अनुभव होगा। वो सदा ही कंप्लेंट से मुक्त होगी और कंप्लीट स्टेज में रहेगी, अर्थात सहज योगी रहेगी, उमंग उत्साह में रहेगी। तो कल की मुरली में वरदान में इतनी पॉइंट्स थी, किन आत्माओं के लिए? जो सर्व संबंधों का रस वृक्षपति से, ये रस यहां मिलता है, सर्व संबंधों का रस, सर्व प्राप्तियों का रस, प्रत्यक्ष फल, ऐसी अगर अवस्था है आत्मा की, आंतरिक अवस्था, आंतरिक अवस्था केवल कहने मात्र नहीं, दिखावे के लिए नहीं। कल कहा था ना, बीके बन गए परंतु स्वयं को ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी समझना और बहन भाई समझना मासिका घर नहीं है, केवल कहने मात्र नहीं। हम तो है ही बाप के, हमारा तो सब कुछ बाबा का ही है, जो भी हम कर रहे हैं सब कुछ बाबा के लिए कर रहे हैं, बाबा ही करा रहा है, केवल कहने मात्र नहीं, लगा ही रहता है। तो अंतर्मुखी अर्थात आत्मिक आनंद में स्थित रहना, आत्मिक आनंद से बड़ा इस संसार में और कोई आनंद नहीं है। देह से प्राप्त आनंद, देह से प्राप्त सुख क्षणभंगुर है, स्थाई नहीं है, अपने साथ दुख लाते हैं। हाँ ये भी एक है, बाकी सर्व संबंध उस आत्मा को निमित्त मात्र लगेंगे, संसार के जो भी संबंध है केवल निमित्त मात्र निभा रहे, बाकी मुख्य संबंध एक से है। ऐसी प्रीत जुट जाए उस एक महबूब से तो फिर बेवफा नहीं होंगे। क्या करेंगे अंतर्मुखी होने के लिए? अंतर्मुखी होना सबसे कठिन कार्य है इस संसार का। दो प्रकार की पर्सनैलिटी गिनी जाती है, इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट। कुछ लोग होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बाह्यमुखी, बाह्य की चीजों में ही उन्हें रस है, बाह्य की गपशप सुनने में उन्हें अच्छा लगता है, व्यर्थ की बातें बोलने में अच्छा लगता है, व्यर्थ की चीजों को देखने में अच्छा लगता है, कुछ कुछ खाने की दिल होती है। परसों मुरली में था, भोजन तुम्हारा सूक्ष्म होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, एक रस होना चाहिए, हबच नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत अच्छा बनाया तो ऐसे नहीं कि ज्यादा खा लो और थोड़ा रख भी लो, वही आदत फिर द्वापर से ब्राह्मणों की चालू होती है। पेट तो देखा ना ब्राह्मणों का कैसा रहता है, यज्ञ में जाते अनुष्ठान में तो भरपूर भरपेट खाते और साथ में परिवार वालों के लिए ले भी जाते हैं। तो अंतर्मुखी अर्थात बाह्य इंद्रिया के जो सुख है, इंद्रिय सुख, उससे आत्मा ऊपर उठे। बाह्य जो राग है, राग और विराग दो अवस्थाएं है, आसक्ति और अनासक्ति दो अवस्थाएं, कभी इधर जाता है मन, कभी उधर जाता है, कभी आकर्षण और कभी विकर्षण। वास्तव में अगर देखा जाए तो दोनों से ऊपर जाना है। शास्त्रों में तीन अवस्थाएं बताइए, एक आसक्ति एक अनासक्ति। अगर एक त्रिकोण निकाला जाए तो एक तरफ आसक्ति एक तरफ अनासक्ति। वो कहते हैं अनासक्ति से भी मुक्त होना है, उन्होंने एक तीसरी अवस्था का वर्णन किया है जो उस त्रिकोण का बिंदु है ऊपर। वो कौन सी अवस्था है? उनका कहना है कि एक तरफ तो कोई व्यक्ति है जो अतिशय भोग विलास में चला गया, दूसरी तरफ वही अनासक्त हो जाता है, पर वो उसी का शीर्षासन है, वो भी पूर्ण अवस्था नहीं है। एक तरफ तो बिल्कुल इतना भोग विलास करता था, दूसरी तरफ वैराग आ गया तो खाना ही छोड़ दिया, फिर अब वो उसी का शीर्षासन है। योगी अर्थात तीसरा बिंदु वीतराग ऊपर। ये त्रिकोण जो है आसक्ति और अनासक्ति, आकर्षण और विकर्षण, विकर्षण है ये भी अवस्था नहीं चाहिए, उससे भी परे। वीतराग डिजायरलेसनेस, दोनों का ज्ञान है परंतु कोई इच्छाओं से वो मुक्त हो चुका है, अभी संपूर्ण मुक्त। उसको अभी किसी से आसक्ति भी नहीं, किसी पे अनासक्ति भी नहीं, किसी पे आकर्षण भी नहीं, किसी से विकर्षण भी नहीं, अति मोह भी नहीं तो घृणा भी नहीं किसी के प्रति। एक अवस्था है, इसी यहाँ तक पहुंचने के लिए पहले वो घृणा की अवस्था से गुजरना पड़ेगा, संसार के प्रति, भोगों के प्रति, जो भी संसार में है आसक्ति वाला। आसक्ति से अनासक्ति की ओर और अनासक्ति से विरक्ति की ओर वीतराग। इस संसार के सभी आकर्षणों से पहले परे चला गया है, उसे फिर इस संसार का कुछ भी आकर्षित नहीं करता है। द कंप्लीट डिजायरलेस स्टेट, कोई भी इच्छा नहीं है, ऐसी योगी की अवस्थाएं है। ऐसा योगी ही अंतर्मुखी होता है। बाह्यमुखी क्यों होता है व्यक्ति, ये सोचने की बात है, क्योंकि पदार्थ तो उसे आकर्षित करते हैं, व्यक्ति उसे आकर्षित करते हैं, इस संसार के मोह और बंधन में वो पता नहीं उसे कैसी एक विडंबना जैसी एक स्थिति है उसकी। किसी ने कहा है, विदेश के एक व्यक्ति ने, शायद फ्रेडरिश नीट्शे कहता है कि मनुष्य का ये स्वभाव ही है कि उसको कॉन्ट्रोवर्सीज पसंद है, उसे विरोध पसंद है, उसे बंधनों में फंसना पसंद है। आसक्तियां उत्पन्न करना उसे पसंद है। वो है मुक्त पर अपने आप को सलाखों से बांधना ही उसे बहुत पसंद है, यही उसका स्वभाव है, क्या करे। वो ज्यादा समय अगर उसको मुक्त रखा तो वो ये सब क्रिएट करता है, निर्माण करता है, अपनी ऊंची अवस्था से नीचे आने का उसका स्वभाव है बार बार, ये उसका स्वभाव है। जितने विदेश में दार्शनिक हुए उन्होंने सबने मनुष्य के स्वभाव पर चिंतन किया, ये मनुष्य का स्वभाव क्या है। कार्ल मार्क्स ने अपनी एक थियोरी निकाली, फ्रेडरिक नीत्से ने थियोरी निकाली, डेविड ह्यूम ने थियोरी निकाली, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से मनुष्य के बारे में सोचा, क्या है स्वभाव, मनुष्य है क्या, क्यों वो ऐसा करता है जो वो कर रहा है। और बाबा उससे भी सबसे डीप फिलोसॉफी सामने प्रेजेंट कर रहे हैं कि जिसमें हजारों चीजें आज तक जितने दार्शनिकों ने जो भी कहा था वो सबसे परे फाइनल थियरी है बाबा की, मनुष्य के स्वभाव, द नेचर ऑफ ह्यूमन माइंड। क्योंकि बाबा सबसे बड़ा एक साइकोलॉजिस्ट भी है, मनोवैज्ञानिक है, मनस्विद, मनुष्य के स्वभाव को जानता है, रहता ऊपर है, संसार के चक्र में नहीं आता है, परंतु एक एक चीज को जानता है, इनके साथ क्या होता है, इनको क्या लगता है, इनकी क्या इच्छाएं हैं, सब वो जानता है। वही तो उसका स्वभाव है, I know the more I know that I know not। सोक्रेटिस लिखता है कि संसार में सबसे ज्ञानी उसी को कहा जाएगा जो ये कहता है कि मुझे कुछ पता नहीं, जो ये कहता है कि मैंने सब जान लिया। समझ लेना ये अभी भी मूर्खता की किसी अवस्था में है, मतलब कुछ नहीं जाना, ये जानना कि मैंने कुछ ना जाना, ये जानना कि अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। बाबा ने भले कह दिया कि ये केवल तुम जानते हो, स्वर्ग और नर्क क्या है केवल तुम जानते हो, आत्मा क्या है तुम जानते हो, परमात्मा क्या है तुम जानते हो, ये सुनने के लिए अच्छा है, परंतु हमने कुछ नहीं जाना। क्योंकि वही आई एम द अल्फा एंड ओमेगा ऑफ दिस वर्ल्ड, जैसे अल्फ और बे होता है ना, वैसे अंग्रेजी में लैटिन में अल्फा होता है और लास्ट जेड जो है उसको ओमेगा कहते हैं। वहां पे भगवान की महावाक्य है, आई एम द बी ऑल एंड एंड ऑल ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार का सब कुछ सर्वेसार मैं हूं, मेरे से ऊपर कुछ नहीं, केवल मुझे जानना ही सर्वोच्च लक्ष्य है। अगर तुमने मुझे नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम, शांत हो जाओ और जानो कि मैं हूं, और यही तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है। तो सारा ही ज्ञान हमारा ज्ञान सूचनाएं नहीं है जिसे एकत्र किया जाए मुरलियों से, विभिन्न मुरलियों से संग्रहित करना, जैसे स्पार्क की किताबें है ना, एक एक टॉपिक पर एक एक किताबें है। अगर जिसने वो किया है, कई सारे ग्रुप्स बने हुए हैं, कोई ग्रुप दिल्ली में है, कोई ग्रुप गुजरात में है, कोई ग्रुप पुणे में है, तो यहाँ से उनको टॉपिक दिया जाता है कि भाई अंतर्मुखता के बारे में बाबा ने आज तक जो कहा है वो सब लिखो। अभी लिखने वाला कोई पढ़ पढ़ के तो लिखता नहीं है, कंप्यूटर में डालो, टाइप करो सर्च में तो धड़धड़ आ जाता है, इधर से कट करो इधर पेस्ट करो, इधर से कट करो इधर पेस्ट करो, एक महीने में किताब रेडी, अंतर्मुखता बड़ी किताब। परंतु ये एक मार्ग जरूर है स्वयं को बिजी रखने का, परंतु वास्तविक सत्य वो नहीं है, सत्य कुछ बहुत ऊंचा है। सत्य को जानना, सत्य की खोज, सत्यान्वेषी बनना, वो खोजी बनना है हमें, सत्य को ढूंढना है। मैं कौन हूं यही प्रश्न बार बार है हमारे मन में आना चाहिए, इतना जल्दी उत्तर में नहीं आ जाओ कि मैं आत्मा हूं, वो खेल ही खत्म हो जाता है फिर, इतना जल्दी नहीं आओ, मैं कौन मैं कौन मैं कौन, क्या मैं वही हूं जिसने ये किया था, मैं ये हूं मैं ये हूं। अपनी मन की विभिन्न अवस्थाओं को देखो, ये भी मैं था, ये भी मैं था, ये भी मैं था, ये भी मैं था, अब ये भी मैं हूं, वो भी मैं ही था जो संसार से आसक्त था, ये भी मैं ही हूं जो अभी एकदम वितराग अवस्था में है, ये भी मैं ही हूं जिसे कभी ये खाऊं वो खाऊं, ये इधर जाऊं उधर जाऊं, ये देखूं वो देखूं, इससे बात करूं उससे बात करूं, वो सब मैं ही हूं। अपने ही आप को देखना, अपने आप को देखने की यात्रा ही अध्यात्म की यात्रा है। इसके लिए इतना सहज रीति से इस उत्तर में नहीं आ जाओ कि मैं आत्मा हूँ। ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, ढूंढते रहो, वो खोज चालू रहे। मैं हूँ कौन, क्या हूँ मैं, क्या ये मस्तिष्क, ये हाथ, ये पैर, ये देह, या देह से कोई पराभौतिक शक्ति में हूँ, कौन सी शक्ति में हूँ, ये चिंतन करना ही अंतर्मुखी अवस्था है। आज भी बाबा ने कहा है ना, अंतर्मुखी, एकांत में बैठकर मनन चिंतन करना सबसे बेस्ट उपयुक्त विकल्प विधान है। अपने आप अंतर में स्थित होना, स्वयं की खोज करना। ज्ञान तो सारा मिल गया है, परंतु वो ज्ञान हमारा बन जाए, अपना बन जाए, हम उसके अनुभवी बन जाए, ये जीवन का लक्ष्य है। तो अंतर्मुखी अर्थात स्व की स्थिति में स्वस्थित हो जाना, स्वास्थ्य अर्थात स्व में स्थित हो जाना, यह अंतर्मुखी अवस्था है। अच्छा, ये हो गया अंतर्मुखी अवस्था। अंतर्मुखी बनने के लिए क्या किया जाए? एक तो एकांत, स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के एकांत चाहिए। संग दोष, ऐसे आत्माओं का संग करना जो बाह्य मुखी है, हमें बाह्य मुखी बना देगा। ऐसे आत्माओं की संगति में रहना जिनका स्वभाव अंतर हमें अंतर्मुखता की ओर प्रेरित करेगा। रागियों का संग करने से मन में राग उत्पन्न होते, विरागियों का संग करने से मन में विराग उत्पन्न होता है। शास्त्रों में लिखा है ऐसी आत्माओं का चिंतन करो कि जो इस संसार की माया मोह से परे निकल गई है। ऐसी आत्माओं का चिंतन करो जो वितराग है। बाबा के कमरे में बैठकर हम बाबा को भी देख सकते, क्योंकि वो अवस्था, उस आत्मा संसार के आकर्षणों से परे चली गई थी। केवल ऐसी आत्मा के चित्र, स्थूल चित्र की ओर भी ध्यान करना तो हमें वही सारे गुण प्रकट करेंगे जो आत्मा इस संसार के आकर्षणों से परे ऊपर निकल गई है। उसकी छवि को देखना, मन में देखना, स्थूल नेत्रों से देखना भी उस तरह के भाव अंदर प्रकट करेंगे। तो पहला है एकांत, दूसरा है संग। किसका संग हम कर रहे हैं? स्थूल संग भी और संकल्पों में भी। संकल्प बार बार किस ओर जा रहे हैं उसको साक्षी होकर देखना। कल बाबा ने कहा ना, मैं सब कुछ साक्षी होकर देखता हूँ, मैं करता कुछ नहीं हूँ, मैं साक्षी होकर देखता। तुम बहुत याद करते हो, मैं क्या तुमको शाबाश की दूंगा? सब कुछ वो साक्षी होकर देखता है, हम भी सब कुछ साक्षी होकर देखे। कौन हमारी निंदा करता है तो हमें क्या होता है, हमारी कोई तारीफ करता है तो क्या होता है, देखो स्वयं को ही। कोई स्तुति करता है तो कितना अंदर गदगद होता है, दिखाएंगे नहीं परंतु होता तो है। निंदा करता है तो क्रोध तो आता है ना, पर दिखाएंगे, थोड़ा थोड़ा दिख ही जाता है वो। तो एक तो ये दो, तीसरा मंजू बहन क्या करेंगे? अंतर्मुखी हो जाना है, व्यर्थ के प्रति इंटरेस्ट ही कम हो जाना। इंटरेस्ट ही नहीं है, सामने रखी है वस्तु, जैसे कोई जिसने संकल्प कर लिया मुझे ये खाना ही नहीं है, सदियों से पड़ी है सामने परंतु ध्यान भी नहीं जाता उधर, यह अवस्था आ जाए तो व्यर्थ की तरफ। व्यर्थ और आत्म, जिन आत्माओं को व्यर्थ में रुचि है, जो आत्मा नकारात्मक बोल सदैव बोलती रहती है, उन आत्माओं से थोड़ा दूर हट जाना। और क्या करेंगे अंतर्मुखी होने के लिए? परदर्शन, परचिंतन से मुक्त। और परदर्शन है धूल और परचिंतन है मिट्टी, धूल और दाग, सॉरी एक स्लोगन था ना, परदर्शन है मिट्टी और परदर्श, परचिंतन है मिट्टी और परदर्शन है दाग। धूल और दाग से मुक्त बेदाग डायमंड बन जाओ। अंतर्मुखी होने के लिए क्या करेंगे? मनन चिंतन सबसे बेस्ट विधि है। ज्ञान के चिंतन में चले जाना, बस ज्ञान के चिंतन में जाते ही आत्मा बाह्य चेतना से मुक्त हो जाती है, बाह्य वातावरण से, बाहर बारिश आ रही है, क्या हो रहा है, होने दो। हम अपने मनन में इतना गहराई में चले जाए, उसके लिए रोज, एक तो यहाँ पढ़ते हैं वो अलग बात है, पर यहाँ से जाने के बाद में अच्छी अच्छी अव्यक्त वाणियों को बैठकर चिंतन मनन करना। केवल पढ़ना नहीं है उसे, किसी एक शब्द पर बुद्धि रुक जाए, केंद्रित हो जाए, केंद्रीभूत एक ही शब्द पर, और उस शब्द की गहराई में जाना। फिर ये बाबा ने क्यों कहा, क्या भावार्थ है और क्या शब्दार्थ है, इसके लिए संसार में अब तक लोगों ने क्या किया, क्या क्या कहा, इसको भी अगर चिंतन करे तो चिंतन और तगड़ा शक्तिशाली मजबूत बन जाएगा। ऐसा नहीं कि अंतर्मुक्ता के लिए हम ही चर्चा कर रहे हैं, संसार ने भी प्रयत्न किया। संसार ने क्या किया अंतर्मुक्ता के लिए, निखिलेश भाई अंतर्मुखी बच जाए, हट योगी ने ऐसा एक योग निकाला है, पूरा मुंह इधर से बंद करना, मुख बंद करना और कान भी बंद करना, ऐसे जोर से दबा के रखना, तो फिर कहते हैं कि दिव्य ज्योति लाइट दिखेगी, कोई लंबा समय करना पड़ेगा फिर तो वो उन्होंने विधि निकाली है, ऐसे पूरा जीभ को उल्टा करना, शारीरिक क्रियाएं बताइए, परंतु क्या उनसे दिव्य गुणों की धारणा हो जाएगी, क्या उसमें आत्मा में शक्ति भर जाएगी, भले लाइट का साक्षात्कार हो जाए, वो अनहद नाद सुनाई देगा। वो कहते हैं जो सृष्टि में सारी कायनात में जो नाद गूंजता है वो सुनाई देगा अगर वो सब करोगे तो, परंतु क्या दिव्य गुणों की धारणा होगी, क्या मनुष्य से देवता बन जाएंगे, क्या आत्मा के सारे विकर्म विनाश हो जाएंगे और आत्मा निर्विकारी अवस्था को उपलब्ध होगी, नहीं, ये संसार ने कहा है। हम क्या करें, और मनन चिंतन एकाग्रता, मनन चिंतन में डूब जाना और बुद्धि को बिजी रखना और
संकल्प से बढ़ाना,
संकल्प को
बढ़ाना,
शुभ संकल्पों का स्टॉक जमा करना, शुभ ज्ञान के पॉइंट्स बहुत सारे हो हमारे को, तभी हो सकता है। स्मृति होनी चाहिए और जो चित्त पर जो स्मृतियां अंकित है बचपन से अब तक या जन्म जन्म की, वो कौन सी स्मृतियां, उन स्मृतियों को देखना, जो काम का है उसे रखना, जो काम का नहीं है, बाबा ने संडे कहा था ना, दग्ध कर दो उसको, याद की अग्नि की याद की लगन की अग्नि से बीज को समाप्त करो, जर्मनी ग्रुप। जो संस्कार है अप एंड डाउन होने का, जो संस्कार है सदर्शन अर्थात सदा चढ़ती कला, कभी चढ़ती कभी गिरती, ये जो संस्कार है ये नहीं हो। और क्या करें अंतर्मुखी होने के लिए, मौन, स्थूल मौन, मौन मन बुद्धि का टाइम टेबल बनाना, तो उसी में बिजी रहेंगे, कार्य व्यवहार में भी बीच बीच में याद आए, क्योंकि भूल जाता है ना, संसार में इतना आकर्षण है या सब कुछ है कि उसमें याद नहीं रहता है कि इधर भी कुछ है और उसकी तरफ ध्यान देना है, यहाँ भी कोई है अदृश्य बैठा हुआ, वो खींचना ही बंद कर देता है, बाह्य जगत का आकर्षण इतना ज्यादा है। और जो प्रलोभन है, कौन कौन से प्रलोभन मुझे आकर्षित करते हैं, उनका भी ध्यान होना चाहिए, कौन कौन सी मेरी कमजोरी है, जैसे एक दो साधु दिखाए हैं किसी शहर के बाहर, दोनों रहते थे और बड़ा ही वीतराग अवस्था थी उनकी, दोनों ही भाई जैसे थे और तपस्या करते रहते थे दिन रात, पर उनको एक चीज की बड़ी डर था, एक बड़ा डर था कीर्ति, उनको पता था पर हमारी ये कमजोरी है, अगर लोग हमारी बहुत तारीफ और ये सब करें तो थोड़ा सा पिघल जाते हैं हम लोग तो ये उनकी जैसे, पर उनको पता था ये हमारी कमजोरी है। एक बार उस गांव के लोग, गांव वाले किसी ने देख लिया, ये दो साधु और महान आत्मा हमारे गांव के बाहर ऐसी तपस्या कर रहे और हम बेखबर, तुरंत राजा को जाके बता दिया। राजा ने कहा अच्छा, ऐसे साधु ऐसी अवस्था में कि जिन्हें संसार का कोई होश ही नहीं, संसार से कोई लेना देना नहीं, ना कीर्ति चाहते हैं, ना धन चाहते, ना संपत्ति चाहते हैं, ऐसे को तो मिलना जाना ही चाहिए, मैं तो उनको अपना गुरु ही बनाऊंगा जाके। तो राजा अपनी पूरी शोभा यात्रा के साथ उनसे मिलने के लिए, दो साधुओं से कि भाई ऐसे महापुरुष हमारे गांव के बाहर, मैं तो उन्हें इधर लेके आऊंगा अपने महल में, ताकि वो मेरा निरंतर मार्गदर्शन करें, मंत्र दीक्षा करें, लोगों का कल्याण करें, विश्व सेवा करें, जन कल्याण करें, इस भाव से। तो वो पूरा सब लोगों के साथ उसकी सेवा में, तो दो साधुओं को बड़ी चिंता हो जाती है, अरे ये राजा हमसे मिलने आ रहा है, अभी राजा आ गया तो बड़ा आदमी आ गया तो छोटे भी आ जाएंगे सारे रोज मिलने, फिर रोज का चालू हो जाएगा ये, रोज सुबह आएंगे, दोपहर को आएंगे, शाम को आएंगे, तो क्या युक्ति करे, सोचते क्या युक्ति करे। तो उनको एक युक्ति सूझती है, जैसे वो राजा उनके द्वार पर आता है, दोनों लड़ना चालू करते हैं, तूने मेरी रोटी क्यों ली, वो कहता है तूने मेरी रोटी क्यों ली दोनों आपस में बहुत जोरदार लड़ाई चालू करते, मेरी रोटी है, वो कहता है मेरी रोटी है, मैं खाऊंगा, वो कहता है नहीं मैं खाऊंगा, वो कहता है मैंने पकाई, वो कहते हैं मैंने बनाया था, तो वो सब चालू हो जाता है। राजा देखता है अरे ये क्या है, मैंने क्या सोचा था, और ये तो इतने विलासी, बोलता है ये मैंने शायद गलत सुना, और चला जाता है। जैसे शोभा यात्रा जाती है वो दोनों खुश हो जाते हैं और फिर अपनी साधना में मगन। युक्ति रची अरे वो जो साधु लोग थे वो दाढ़ी बढ़ाते थे, क्यों? मूछ दाढ़ी और नहाते नहीं थे, राख लगा देते थे, क्यों? सौंदर्य से आकर्षित ना हो कोई उनकी तरफ, क्योंकि वो ब्रह्मचर्य रहते थे सभी। ब्रह्मचर्य से ओजस शक्ति जो वीर्य है वो ओजस में परिवर्तन हो जाता है, मुख में मुखमंडल पर एक अद्भुत सा तेज आ जाता है उससे, जो कि प्रजोत्पत्ति के लिए प्रयोग में किया जाता है संसार में। वो शरीर में ही समा जाता है रक्त में, और एक विशिष्ट नाड़ी मेधा नाड़ी उत्पन्न होती है जिससे कि वो सहस्त्रार चक्र की ओर जाता है, और आत्मा में अद्भुत सा प्रकाश, वाणी में एक तेज उत्पन्न होता है उस ओजस उस शक्ति से। तो ये जो तेज है प्रचंड शक्ति यौवन की, उसको कैसे छुपाए? नहीं तो स्त्रिया या पुरुष स्त्री की तरफ, स्त्री पुरुष की तरफ आकर्षित हो जाए, इसके लिए राख लगा लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, ताकि कोई आकर्षित ना हो, एकदम कुरूप दिखना चाहिए, फिर भी लोग छोड़ते नहीं, वो दूसरी बात है और उनके पीछे पीछे भागते हैं, और ज्यादा तो उनके पीछे भागते हैं जो साधु पत्थर मार मार के अपने लोगों को भगाते हैं, उनको लगता है कि और लगता है इनके पास जरूर कुछ है सिद्धि है, और उनके पास जाते हैं लोग। ये संसार की अद्भुत नियम है। तो अंतर्मुक्ता अंतर्मुखी अपने ही अपने आप को छिपा देना, लो प्रोफाइल, टू कीप अ लो प्रोफाइल, मॉडर्न भाषा में लो प्रोफाइल रखना, कि भाई किसी को पता ही नहीं चले हम कुछ कर भी रहे, चुपचाप आए कार्य किए और चले। थोड़ा सा भी बाहर निकलने का प्रयत्न किया, जैसे तुम जड़े हो, बाबा ने कहा है अगर जड़ों को कभी लगे कि हम भी प्रत्यक्ष हो जाए, हमारे फूल देखो लोग कितनी तारीफ करते, हमारे फल देखो लोग कितनी तारीफ करते, पेड़ की छाया में कितने लोग हैं, पर हमारी कोई तारीफ करता है? इसके इसके जड़े बहुत ही अच्छी है, सुंदर है, शोभनीक है, कोई नहीं बोलता है आज तक, सारे वृक्ष की तारीफ करते हैं, हाँ तो वो नीचे है। तो अगर उनको कभी संकल्प आएगा कि नहीं मुझे भी प्रत्यक्ष होना है, और जड़े बाहर आ जाए तो लकड़ारा आ जाएंगे, बोलेंगे अच्छी जड़े है, काट के लेके जाएगा। इसके लिए प्रत्यक्ष होने का संकल्प खतरा है उसमें। उस साधुओं की तरह युक्ति रचनी पड़ेगी, अगर कोई की कोई आकर्षित ही हो जाए हमारी तरफ, भाई तुम तो बहुत ही बढ़िया हो, तो कुछ करना पड़ेगा और पिंड छुड़ाना पड़ेगा। हो सकता है और क्या कर सकते हैं अंतर्मुखी होने के लिए? लास्ट पॉइंट कुछ और, समान का अभ्यास, दिनचर्या की सेटिंग बताया, समान का अभ्यास, ऐसा कुछ करे कि जिससे मैं आत्मा में चिपका रहूं। अपने आप को देखना, झांकना, अपने आप में झांकना, टटोलना, परखना। वो भी कहा है, फटकारना तो है ही ना, झापना अर्थात फटकारना, स्वयं स्वयं को सजा देना। तो अंतर्मुखी हो जाना और ज्ञान की गहराई में जाना, और खोज करना स्वयं की कमजोरियों की, स्वयं के गुणों की भी हमें परखो, हम में क्या विशेषताएं, हम में क्या गुण है, साथ में कमजोरी कहाँ है, कौन सी ऐसी बात हो जाती है तो स्थिति धड़ाम से नीचे गिरती है, क्या ऐसा हो जाता है जीवन में, किसी की स्तुति होती है तो स्थिति नीचे आती है, किसी की निंदा होती है तो स्थिति नीचे आती है, किसी का क्रिटिसिज्म हो जाता है, क्रिटिसाइज हो जाता है, आपने कुछ मत रखा और सभा में मीटिंग में सब लोगों ने उसका जबरदस्त जोरदार विरोध किया पेट भरकर, तब हमारी स्थिति क्या होती है? हमने कुछ प्रस्ताव रखा और सबने कहा बिल्कुल नहीं है तो बिल्कुल जरूरी नहीं है, और उसका बहुत ही जबरदस्त विरोध कर दिया, तब क्या होता है? निंदा करते हैं तो क्या होता है? पीठ पीछे निंदा करते हैं तो क्या होता है? ये सारी अवस्थाओं में मेरी स्थिति क्या रहती है वो हमें पता रहना चाहिए। स्वयं को स्वयं देखना। तो ये किसको कहा बाबा ने? इंदौर का अर्थ है अंतर्मुक्ता। तो इंदौर वाले चारों ओर अंतर्मुक्ता की शक्ति के वाइब्रेशन से चारों ओर A1 के वाइब्रेशन फैलाएंगे। मंजूर है? भगवान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भाई? बोलो, तुमको मंजूर है तो करेंगे, नहीं तो छोड़ो। रिक्वेस्ट है उसकी बड़े ही नम्रता से, मंजूर है? डू यू एक्सेप्ट? यस तो यस। नहीं, मजबूरी नहीं है, ये तो बड़ा ही नम्रता पूर्वक पूछा हुआ है। नहीं, पर उसमें भी कुछ तो राजनीति तो होगी उसकी। ओम शांति।